सिमरन में एकाग्रता कैसे लाई जाए ये जानना चाहते हैं। सिमरन में एकाग्रता के लिए सबसे पहले तो ये विचार अंदर रहना बहुत जरूरी है। जिस ईश्वर का मैं सिमरन कर रहा हूं वो ईश्वर ही सब कुछ है। मैं जिसको जीव कहा जाता है उस ईश्वर का ही अंश हूं, उससे अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जिसको महाराज जी कह रहे हैं उस ईश्वर सत्ता से जीव सत्ता ऐसे ही प्रकट हुई है या कर्तापन ऐसे ही प्रकट हुआ है जैसे कि सहज स्वभाव ही जल में तरंग पैदा होती है। अब कहने को तो जल में तरंग पैदा हुई ये हमको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन वास्तव में देखें तो जल में तरंग नाम की कोई वस्तु पैदा हुई नहीं है। जैसा जल पहले था ऐसा ही वो तरंग पैदा होने के बाद भी वैसे के वैसे ही। तो इसीलिए इस जीव को भी यही सोचना है मैं ईश्वर ही हूं, वास्तव में मैं ईश्वर ही हूं, लेकिन अहंकार के कारण या भ्रम के कारण मैं अपने आप को ईश्वर से अलग कर देखता हूं और ईश्वर से अलग अपने आप को करता समझता हूं। जबकि वाणी तो बड़ा स्पष्ट कर रही है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। सारे जगत का कर्ता ईश्वर को समझो और अपने आप को अकर्ता बनाओ। तो जिस दिन भी तुम अकर्ता हो जाओगे वास्तव में उसी दिन आप ज्ञानी बन जाओगे। ज्ञानी उसे कहते हैं जो खुद ईश्वर है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं प्रेमी ये सारा का सारा जो कुछ भी जीव का अपना अहंकार है कि मैं हूं ये भ्रम है इसका। जब जीव का स्वरूप ही भ्रम है तो संसार का स्वरूप भी भ्रम ही हुआ, क्योंकि जीव से संसार पैदा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि स्वप्न की रचना हमारी जब बनती है तब हमको पता है जागने के बाद कि मेरे मन के संकल्प से स्वप्न की रचना बनी है, जिसमें लोग भी पैदा हो गए, संसार भी पैदा हो गए, मेरी देह भी पैदा हो गई, मेरे शरीर से कर्म भी हो रहे हैं, उनका फल भी हो रहा है, स्वप्न में सब कुछ हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन जागने के बाद मैं बड़े साधारण रूप में कह देता हूं कि ये केवल मेरे मन का संकल्प था, ये केवल झूठा स्वप्न था। और महर्षि रमा कह रहे हैं कि जो स्वप्न की रचना है और जो ये वर्तमान संसार की रचना है, मैं आपकी देह के, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही रचना बिल्कुल एक जैसी है। तो इसीलिए हमको इतना बड़ा भ्रम लगा हुआ है कि इसको सत्य मानकर हम ईश्वर की याद को भी भूल जाते हैं और इसके लिए जब प्रोग्राम बनाते हैं संसार के लिए पूरा उसमें खो जाते हैं कि संसार के प्रोग्राम में यदि फेल हुए हम तो जिंदगी हमारी खत्म हो गई। तो ये हमारे अविवेक की हालत है, ये हमारे हमारी अज्ञानता की हालत है, ये हमारी भ्रम की हालत है। अब ये सारी बातें समता विलास में लिखी हुई हैं। कई बार सत्संग में भी सुना होगा, पढ़ी भी होंगी, लेकिन जैसा लिखा है वैसा चिंतन हमने कभी भी नहीं किया। इसलिए ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं, समझे, और उसकी जो जड़ है वहां हमारी निगाह नहीं पहुंचती। तो ऊपर से जो हम आध्यात्मिक प्रोग्राम जीवन में अपना भी लेते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है, जैसे कि कोई वृक्ष की जड़ें बड़ी गहरी हों, ऊपर से काटते रहो उसको तो पुनः उसमें से अंकुर फूटता रहता है। तो कुछ विकार हमने कम करे, एक साल बाद देखा कि जो कम करे थे वो दोबारा पैदा हो गए, कई बार ऐसा होता है उससे पहले से भी ज़्यादा मजबूत पैदा हो गए। तो कारण यह है कि हमने उस विज्ञान की जड़ ही नहीं पकड़ी कि गुरु कह क्या रहा है, शास्त्र कह क्या रहा है। तो इसीलिए जब इस विज्ञान के साथ, या यूं कह लें कि इस विवेक के साथ जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमारी बुद्धि में ये बात निश्चित रूप से बैठी होती है कि मेरा अस्तित्व ही पाप रूप है। जो वर्तमान अस्तित्व मैंने समझ रखा है कि मैं अलग हूं, अहंकार है मेरे अंदर, अहंकार के कारण ही आपके अंदर कर्तापन है, तो इस कर्तापन को खत्म करने के लिए आप सिमरन कर रहे हो। सिमरन का जो करना है आपका कर्तापन को खत्म करने के लिए तो है। महा जी कह रहे हैं प्रेमी ईश्वर कोई दूर नहीं है, तेरे अंदर जो ये कर्तापन का भाव बैठा हुआ है इसके कारण ईश्वर दूर नजर आ रहा है। जब तक तू कर्ता बना रहेगा तो ईश्वर को कर्ता कैसे समझेगा, बता। तो इसीलिए हमको सारा चिंतन इस प्रकार से करना पड़ता है ताकि हर एंगल से ये सिद्ध हो कि ईश्वर करता है। जैसे कि मैं अपनी देह से कितने से कर्म करता हूं, मेरे जो कर्म हैं वो परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकते, वो परिवार का पालन भी नहीं कर सकते। परिवार की रक्षा, परिवार का पालन तो ये प्रकृति कर रही है। सूर्य अपना काम ना करे तो कुछ वनस्पति पैदा होगी धरती पर, परिवार जिंदा रहेगा क्या? अपनी इतनी सी करनी मुझे कितनी बड़ी करके देखता हूँ, और कुदरत की इतनी बड़ी करनी उसको उस पर नजर ही नहीं रहती मेरी। तो हमारे शरीर की भी एग्जिस्टेंस संसार में बनी हुई है, इसका कारण भी ईश्वरी है, मैं नहीं हूं इसका कारण। मैं संसार में आया तो मैं भी अपने कारण से नहीं आ गया, मैंने अपने आप को पैदा नहीं किया, ईश्वर ने मुझको पैदा किया। तो इसीलिए जब मैं इस प्रकार से सोचता हूं जैसा कि विज्ञान शास्त्रों में लिखा हुआ है, तब धीरे धीरे मेरा यह अहंकार टूटता है कि मेरे करने से कुछ हो रहा है। तो चाहे मेरी देह है, चाहे मेरे परिवार का की देह है या संसार है, ये सब कुछ ईश्वर के कारण चल रहा है। इसको पैदा करने वाला भी वही है, इसको नष्ट करने वाला भी वही है। तो जब ये विज्ञान या ये विवेक मेरे अंदर जब परिपक्व होता है तब मैं ईश्वर को ही सब कुछ समझने लगता हूँ। उस हालत में जब मैं सिमरन करने बैठता हूँ तो फिर संसार की जो छोटी छोटी बातें मुझको जो तंग करती हैं, तो इसके मुकाबले में जो बड़ी बात आपके सामने आ गई है बुद्धि में कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो आपके अंदर से ये वहम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, संकल्प की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ती है। तो पहला तो विवेक ये है कि भाई इस देह का संचालन करने वाला जो ईश्वर है वो इस देह के अंदर मौजूद है, और मेरा जो संसार है इसका संचालन करने वाला भी ईश्वर है। इसीलिए जिसने भी सिमरन करना है उसके लिए महाजी एक बात कह रहे हैं कि प्रेमी सिमरन करने वाले के अंदर ईश्वर परायणता होनी चाहिए। ईश्वर परायणता का मतलब ही होता है कारण कर्ता ईश्वर है। कोई घटना घटती है उसका कोई कारण होता है, तो इसलिए कारण भी वही है और उस घटना को करवाने वाला भी वही, या करने वाला भी वही। तो जब मैं कारणकर्ता ईश्वर को समझता हूँ तो मेरे अंदर जो द्वंद्व चलते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जो संकल्प का जो फोर्स है ये वीक पड़ जाता है, खत्म तो नहीं होगा आपका, वीक पड़ जाता है। और ईश्वर की प्राप्ति का जो महत्व है वो आपके अंदर स्ट्रांग हो जाता है। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही हो जाता है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करना। तो जब आपकी बुद्धि में ईश्वर का महत्व इतना होगा और संसार की जो चेतना आपके पीछे लगी हुई है, ये अनिश्चय की हालत जो लगी हुई है, ये ईश्वर प्रायणता के कारण जब कमजोर पड़ेगी तो सिमरन में आपका मन लगेगा। अभी इसलिए नहीं लगता कि हमने सिमरन को उतना जरूरी नहीं समझा है जितना जरूरी ये है। सत्पुरुष ऐसी थोड़ा कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। महाजी का सेंटेंस लिखा हुआ है समता विलास में कि सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। अब ये बात हमारी समझ में थोड़ा आती है। हम तो कहेंगे कि बच्चों को पालना ये पहला कर्म है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम जिंदगी का है बच्चों को पालना। और यदि स्टूडेंट हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कर्म हमारे लिए है कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है समाज संसार में बनने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो जिंदगी के हर मोड़ पर हम ये देखते हैं, संसार में से कोई एक आइटम चुन लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो शादी करने का हो, चाहे वो परिवार पालन करने का हो, चाहे वो रोजगार का हो, हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। ईश्वर कहाँ होता है इम्पोर्टेंट काम? जब हमारी बुद्धि में ही ईश्वर की इम्पोर्टेंस नहीं है, वो महत्व नहीं है, तो उसमें चित्त एकाग्र कैसे हो सकता है? मेरा विचार करके चाहते तो हम ये हैं कि संसार जैसे हम चलाना चाहते हैं वैसे चलता रहे, और ईश्वर के सिमरन के लिए जब हम बैठे हैं तो उसमें चित्त हमारा एकाग्र भी हो जाए। ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती, असंभव बात। ये सारा जो विज्ञान है ये बारीकी से जो पढ़ा जाता है, बारीकी से समझने की कोशिश की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि जो इम्पोर्टेंस हमारे बुद्धि में संसार की बैठी हुई है वो धीरे धीरे कम हो, और जितना हम ईश्वर को महत्वपूर्ण समझते हैं वो महत्व ईश्वर का इतना बढ़ जाए कि जैसे कि प्रहलाद की स्थिति है कि मौत भी शरीर की आ जाए तब भी उसको चिंता नहीं है, ईश्वर भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। तो भक्त की स्थिति ये है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी मौत है, मतलब कि ये जीवन है आपका। तो जहां जीवन भी जा रहा है आपका और जीवन लेने वाला कह रहा है कि या तो ईश्वर को छोड़ दो या फिर मौत को स्वीकार कर लो, तो जो भक्त है जो ईश्वर को महत्व को समझता है वो मौत स्वीकार कर लेता है, ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। तो देखना तो हमको सत्पुरुषों को ही पड़ेगा ना, भक्तों को ही देखना पड़ेगा। उनके जीवन से ही हमको पता रहता है कि ये ईश्वर भक्ति कितना इंपॉर्टेंट आइटम है जीवन में और हमने क्या महत्व दे रखा है इसको। जरा से स्वाद के लिए भी हम ईश्वर को छोड़ दें, तो इसीलिए क्योंकि हमारी बुद्धि में ईश्वर की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो वास्तव में इंपॉर्टेंस शास्त्र बता रहे हैं। ना समझी बहुत गहरी है हमारे अंदर। तो इसीलिए ये सारी जो हैं बाधाएं सिमरन में आती हैं, एकाग्रता नहीं हो पाती। और दूसरी बात जो सिमरन में एकाग्रता की है वो है प्रेम की। सिमरन में प्रेम भी हमारे अंदर नहीं होता। प्रेम क्यों नहीं होता? प्रेम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जिस चीज का सिमरन कर रहे हैं उसको ईश्वर नहीं समझते। जैसे मैं मंत्र का सिमरन कर रहा हूं अब मंत्र को मैं एक अक्षर करके या लैंग्वेज करके समझ रहा हूँ, ये मंत्र है, मैंने रट लिया है, मैंने याद कर लिया है, अब मैंने इसको बार बार रिपीट करना है। जबकि शास्त्र दूसरी बात कह रहे हैं, महर्षि रमण कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि आत्मा मंत्र गुरु कुंडलनी ईश्वर एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब ऐसे ही समझ लो जैसे कि चीनी है। अब चीनी का आपने 10 तरह के खिलौने तैयार कर दिए, एक ऊंट तैयार कर दिया चीनी का, एक घोड़ा तैयार कर दिया आपने, एक खरगोश तैयार कर दिया, देखने में 10 रूप तैयार कर दिए, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आप कहोगे ये तो केवल चीनी है, कुछ भी ना घोड़ा है ना खरगोश है, ये केवल प्योर चीनी है। तो सत्पुरुष ये बात कह रहे हैं ना, उसमें हम फिर भी अपनी बुद्धि लगा दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा होता थोड़ा ना है, जैसे उन्होंने बहकाने के लिए आपको कोई बात कह दी, आप उनकी बात को ऐसे देखते हो जैसे आपकी बुद्धि बहुत तेज है, सत्पुरुष की बुद्धि कुछ नहीं है, तो उसकी बात को आप बस एक रट लिया आपने या सुन लिया या पढ़ लिया, जैसा वो कह रहे हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं किया आपने। तो इसीलिए इन गुरुओं की बात जब पढ़ो आप, तो वो कहते हैं कि यदि कोई जीव या कोई मनुष्य जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है और अपनी पात्रता तैयार कर लेता है सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार, तो जरूरत पड़ने पर अंतर्यामी ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर उस भक्त का मार्गदर्शन करता है। अब अंतर्यामी ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर भक्त का मार्गदर्शन करता है। अब गुरु देखने में तो कहोगे इसका तो शरीर पैदा हुआ है, इसका नाम ये है, इसका शरीर मर भी जाएगा, और गुरुओं के शरीर को लोगों ने फूंक भी दिया, आप तो यही डाउट करोगे ये कैसे ईश्वर हो सकता है। तुम शरीर को पकड़ के बैठ गए और वो क्या कह रहा है गुरु, वो कह रहा है तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। तो उस देह के द्वारा जो सत्ता मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारा संबंध उस देह से है या उस सत्ता से? हमने देह से संबंध बना लिया, सत्ता को भूल गए, और यही हम अपने बारे में करते हैं। हूं मैं जीव सत्ता, मुझको जीव कहा गया ना, बना लिया मैंने आपको शरीर, मेरा साइज ये है, मेरा नाम ये है, सारा जो शरीर का स्पेसिफिकेशन था, डिटेल्स थी, वो आपकी डिटेल्स बन गई। और महाराज जी की वाणी क्या कह रही है, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, इस संसार में ये जीव नित्य का मुसाफिर है। मुसाफिर उसे कहते हैं जो कुछ दिन के लिए आता है फिर वहां से ठहर के चला जाता है। तो वाणी तो मुझे जीव कह रही है, मैं अपने आप को मनुष्य कह रहा हूं, वो यही भेद है। अपने बारे में मेरी समझ नहीं है तो ईश्वर के बारे में क्या समझ होगी आपके अंदर? इसीलिए मैं ईर्ष्या द्वेष करता हूं लोगों से, जरा सा किसी ने मेरे मन के विरुद्ध बात कही नाराज होकर बैठ जाता हूं, मैं होश ही नहीं अपने बारे में कुछ। फिर ये भी समझता हूं मुझे सारा ज्ञान है, अपने बारे में तो ये 50 साल में ज्ञान नहीं हुआ, ईश्वर के बारे में क्या ज्ञान होना है तेरे अंदर? तो मेरे अविवेक की ये हालत है, मेरी मूर्खता की ये हालत कि गुरु की एक बात भी सही रूप में मेरे पल्ले नहीं पड़ी है। अब ये वाणी कितने लोग गाते होंगे, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत। ये अवधि तो शरीर की है ना, देह की जितनी आयु ये अवधि मिली है तुझको ईश्वर से मिलने के लिए, तू आयु बढ़ाने पर लगा हुआ है देह के भोगों के लिए। तो मैं जीव हूं ये मैंने गुरु से ये भी नहीं सीखा आज तक। मैं नित्य का मुसाफिर हूं अर्थात मेरी मृत्यु नहीं होती है, मेरी मृत्यु ही नहीं है, और देह की मृत्यु को मैं अपनी मृत्यु समझता हूं। तो इस देह के अंदर जब जितने दिन मैं निवास करता हूं मुझको मेरे मन में अशांति ही तो बनी रहती है, हजारों कारण ऐसे हैं जिनके कारण मेरे मन में अशांति बनी रहती है, वो मेरी अपनी इच्छाएं हैं और क्या है। और ये कहानी मेरी किसी भी जन्म में खत्म नहीं होने वाली है। यदि इस जन्म का मैंने सदुपयोग नहीं किया जैसा गुरु कह रहा है तो अगला जन्म मेरा इससे खराब आने वाला है, इससे गहरी दुर्दशा में मैं फंसने वाला हूं। तो अभी मैं भजन नहीं कर पाया तो अगले जन्म में कहां से करूंगा, इसी जन्म में मैं खाने पर संयम नहीं कर पाया तो अगले जन्म में कहां से करूंगा, मैं आदतें तो मैंने बिगाड़ी है जन्म में। तो ये जन्म आपको तप करने के लिए मिला था, आप भोग करने बैठ गए, फिर चाहते हो कि मन जो है मेरा सिमरन में लग जाए, एकाग्रता भी आ जाए, कैसे आ जाए। एक एक आइटम देखो जरा आप अपना, जहां आपकी सोच खड़ी है आपको पता लगेगा मैं कर क्या रहा हूं। मैंने आज तक केवल संसारियों की नकल की और कुछ नहीं किया है, गुरु की बात पर तो ध्यान ही दिया, ध्यान ही नहीं दिया। तो जब तक इस प्रकार से हम हमारी सोच नहीं बदलती अपने बारे में और ईश्वर के बारे में, तब तक सिमरन में एकाग्रता कैसे आएगी। तो जिस चीज का सिमरन कर रहे हैं, कर तो हम ईश्वर का ही सिमरन है, लेकिन ईश्वर तो हमारे सामने प्रकट ही नहीं। तो ईश्वर ने अपने आप को मंत्र रूप में प्रकट किया है, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट किया है। तो ये ईश्वर का प्रकटीकरण है, ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है, जिसको हम मंत्र कह रहे हैं। ये मंत्र नहीं है, इसीलिए वाणी इसको सत मंत्र कह रही है। सत कहते हैं चेतन सत्ता को, तो ये मंत्र खुद चेतन सत्ता है। यदि ये खुद चेतन सत्ता नहीं होता तो इसमें ये शक्ति कहां से आ जाती, जिसको वाणी कह रही है कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्व योग। इस मंत्र के जब से तेरे सारे कलह कलेश खत्म हो जाएंगे और ज्ञान तत्व में तेरी स्थिति हो जाएगी। ये कहां से हो जाएगा फिर यदि मंत्र ईश्वर नहीं है, तो विचार करके तो देखो। तो मैं किस लापरवाही से मंत्र का जाप करता हूं, ये मुझको पता है, तो प्रेम कहां से आएगा। मंत्र के सिमरन की जब बात आ रही है तो महाराज जी सबसे पहले लिख रहे हैं त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, अपार कल्याण, अपार कल्याण कहते हैं मोक्ष को। तो प्रेम तो याद रखो लाइव चीज से होता है ना, जड़ वस्तु से को तो आप लाइक करते हो डिसलाइक करते हो, पसंद करते हो नापसंद करते हो, लेकिन प्रेम थोड़ा आता जड़ वस्तु से, प्रेम तो लाइव वस्तु से होता है। मनुष्यों से प्रेम होता है, जानवर से प्रेम होता है। तो ये मंत्र जीवित वस्तु है, ये चेतन शक्ति है, ये या यूं कह लें चेतन शक्ति का ये अवतार है। ये अवतार वैसा ही है जैसा कि चीनी का खिलौना बना दिया किसी ने, तो चीनी खत्म थोड़ा ना होगी, चीनी तो वैसी की वैसी। तो मंत्र के प्रति जब ये भाव रहता है ईश्वर भाव हमारे अंदर, इस ईश्वर भाव से मैं उसको मौन होकर अंदर उसका जाप करता हूं, तब पता लगता है कि कैसी एकाग्रता आती है। इसलिए जब भी मंत्र के बारे में कोई बात कही जाती है, ये बात साथ में कही जाती है कि सिमरन करते करते भाव गायब नहीं होना चाहिए। वो यही भाव है कि मैं मंत्र नहीं, मैं ईश्वर का संग कर रहा हूं, मैं मंत्र को याद नहीं कर रहा हूं, मंत्र के माध्यम से मेरा और ईश्वर का मिलन हो रहा है, क्योंकि ये खुद ईश्वर है मंत्र, ये खुद वो चेतन सत्ता है। इसीलिए जैसे जैसे मेरा मन जो है मंत्र में रमता है, लगता है, वैसे वैसे मन का शोधन, मन का मैल जो है वो साफ होता रहता है। इसी को महाजी कह रहे हैं, प्रेमी सिद्ध मंत्र के जाप से, गुरु मंत्र के जाप से जन्म जन्मांतर के संस्कार भस्म हो जाते हैं। अब जितने इस जन्म में कर्म किए मैंने, भोग विलास के संस्कार बन गए, नहीं बन गए मेरे अंदर? कितना खाया होगा, कितनी चीजें खाई होंगी, मेरी तृप्ति आज तक नहीं हुई। कोई भी स्वादिष्ट चीज मुझको मिल जाती है तो बार बार याद आती है, फिर मिले मुझे, फिर मिले मुझे, फिर मिले मुझे। अब ये तो जो होश नहीं आ रहा कि मंत्र से एक तो तू संस्कार काट रहा है और बदपरहेज करके एक संस्कार बना रहा था, कैसा भक्त है तू? ऐसा भक्त कहां पहुंचेगा भैया? उसको होश ही नहीं है मन के संस्कार भस्म करने के लिए मैं सिमरन कर रहा हूं, उधर मैं नए संस्कार का निर्माण कर रहा हूं। तो इसीलिए हर मामले में इस जीव को तप करना ही पड़ता है, बिना तप के ऐसा गुजारा नहीं है। तपोभूमि में आके भी आपसे कहा जाता है कि भाई सादा खाओ, कम खाओ, मौन रहने की कोशिश करो, क्योंकि संस्कार बने मान लिया मेरे बोलने के, बोलते ही रहूंगा मैं। तो यहां पर आप गहरा तप करते हो और घर पर भी जाकर आप जो है वो इतना तप नहीं कर सकते, लेकिन नजर आपकी तप पर रहती है। जितना अधिक से अधिक संयम घर पर रहकर कर सकता हूं यदि मैं, तो उतना ही अधिक मेरी प्रगति जल्दी ईश्वर मार्ग में हो जाएगी। तभी तो महाजी ने कहा कि मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। ईश्वर ने तो बहुत दे रखा है तुझको, तो यदि तू भोगने में लग गया तो क्या हाल होगा तेरा? तो ईश्वर ने बहुत दिया है तो सब कुछ एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं आपको कि उसको दीन दुखों की सेवा में लगाओ। भोगने की परमिशन ही नहीं है आपको, क्योंकि मनुष्य जन्म बेकार चला जाएगा, मनुष्य जनता का बेकार चला जाएगा। भोगों के संस्कार खत्म करने के लिए मैं आया हूं, ये मानव देह मुझको इस वास्ते मिली है। तो जब तक मैं अपने बारे में ठीक नहीं समझता कि मैं क्या हूं, ईश्वर के बारे में जब तक ठीक नहीं समझता ईश्वर क्या है, अपने बंधन के बारे में जब तक मैं ठीक प्रकार से नहीं समझता मेरा बंधन क्या है, कितना गहरा बंधन है, मंत्र के बारे में भी जब तक मैं ठीक नहीं समझता कि मंत्र क्या है, तब तक आपका सिमरन ठीक कैसे बन सकता है? विचार करके देखो। इसलिए महाजी कहते थे कि प्रेमी पूर्ण प्रयत्न चाहिए, पूर्ण वैराग्य चाहिए और पूर्ण विवेक चाहिए। ये तीन चीजें संग होती हैं तब जाकर अभ्यास सही बन पाता है। जिसका विवेक कमजोर होगा, जिसका संयम कमजोर होगा और जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, अर्थात ईश्वर का महत्व उसके मन में नहीं है, जीवन में सबसे कीमती चीज ईश्वर है ऐसा महत्व नहीं है, अर्थात विवेक नहीं है, तो सिमरन में उसकी एकाग्रता कैसे आ सकती है? तो जिसके अंदर विवेक स्ट्रांग होगा उसके अंदर वैराग्य भी होगा। याद रखिए, विवेक और ये वैराग्य ये साथ चलते हैं। जो और जिसके अंदर विवेक और वैराग्य होगा उसका प्रयत्न भी जरूर होगा, दृढ़ता से वो ईश्वर मार्ग पर चलने वाला होगा, वो तो उसकी एकाग्रता भी होगी। और जिनके अंदर एकाग्रता नहीं होती है, इन तीन चीजों में से कमी होगी, देख लो आप। मान लिया चलो मंत्र के जाप से आपके अंदर ईश्वर की कृपा प्रकट भी होगी, तो ज्यादा मन लगेगा नहीं लगेगा उसमें आपका? जब ज्यादा मन लगेगा तो ज्यादा समय लगेगा नहीं लगेगा आपका उसमें? जब ज्यादा समय लगेगा तो भगवत समय बचाओगे नहीं बचाओगे? कमाई करने से समय बचाओगे नहीं बचाओगे? तो ये तो बढ़ना है आपका। ईश्वर का प्रेम जब आपके अंदर बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ जाएगी आपकी, वैराग्य बढ़ जाएगा, विवेक बढ़ जाएगा, नहीं और अभ्यास ही बढ़ जाएगा आप, तो संसार छोटा होगा नहीं होगा। और जिनका अंतिम जन्म होता है उनके जीवन को देख लो, जितने भी ऋषि हुए हैं सबका, जिनका अंतिम जन्म, जैसे महाराज का अंतिम जन्म था, तो पूरे जन्म क्या करते रहे वो? तो जब ईश्वर का प्रेम आपके अंदर उमड़ेगा तो संसार पूरी तरह छूट जाएगा आपका। इस शरीर रूप में तो महाराज जी संसार में रहे, संसार से भाग गए कहीं पर, कर्म भी सारे किए उन्होंने, कौन से कर्म? आपसे ज्यादा जरूरी काम कर्म कर दिए उन्होंने। आपने दो बच्चे पाले होंगे, उन्होंने तो इतने लोगों का कल्याण कर दिया अपने शास की रचना करके, हम क्या कर्म करते हैं उनके आगे? जंगल में रहकर भी कितना कर्म कर गए वो, हम तो 500 जन्म में तक कर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये रास्ता सेक्रीफाइस मांगता है। जिसका दैनिक जीवन में ही संयम नहीं है, जिसका बोलने में ही संयम नहीं है, जिसका व्यवहार में ही संयम नहीं है, उसने ईश्वर के प्रति एकाग्रता क्या प्राप्त करनी है? हम यहाँ पे आते थे पहले तो याद है कि महाराज जी के एक शिष्य यहाँ पर पंडित रामजी दास जी मिलते थे, तो यहाँ कुटिया थी बीच में, तो बड़ा कमरा बन गया, तो यहीं पर उनके साथ उनके कमरे में ठहरते थे, तो उनको देखते थे पूरी रात वो बैठे रहते थे। हम तो अपने 10 बजे सो गए, 9:30 बजे सो गए, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, लेकिन वो सारी रात बैठे रहते थे, घंटा दो घंटा लेटते होंगे मैक्सिमम। खाने का ये हाल था कि जो रात्रि का खाना होता था, एक रोटी नमक की रोटी केवल दूध के साथ वो मिलती थी खाने को, बस डिनर ये मिलता था, ना कोई सब्जी होती थी ना कुछ होता था। और सुबह को दाल और दो रोटी, मैं ये 24 घंटे मिलता था खाना यहाँ पर। सुबह की चाय भी नहीं मिलती थी यहाँ पर, शाम की चाय भी नहीं होती थी। तो वर्षों यही प्रोग्राम पे चलते रहे यहाँ पर आके, आते यहाँ पहले भी 1 महीने के लिए थे, तो अब धीरे धीरे देखिए कैसा स्वरूप बदल रहा है, तप का भी स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि भोगवादी जीवन बढ़ रहा है, कौन तप करे? सुबह से शाम तक एक ही प्रोग्राम होता था कि स्वाध्याय करना, सेवन करना, बस बाकी मतलब कुछ। जिसका सिमरन कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ते रहे, एकांतवास का प्रोग्राम ये होता है। और हम लोग क्या क्या आशाएं करते हैं यहाँ आकर, ये खाने को मिल जाए, ऐसा मिल जाए, सोच रहे थे। संसार छोड़ के आए यहाँ, फिर संसार पकड़ लिया, इंद्रिया मन तो हमारे साथ है ना, इसी मन इंद्रिय का तप पर नहीं आए थे, यहां भी भोगला की सोचते रहते। तो इसीलिए जैसे जैसे आप गुरु के अनुसार सोचेंगे, समझे, जैसा शास्त्र मार्गदर्शन कर रहा है उसके अनुसार आपके अंदर विवेक जागृत होगा, तो साथ में वैराग्य भी होगा। यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है तो समझ लीजिए आपको शास्त्र की समझ नहीं आई अभी, सीधी सी पहचान। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है मन में, उसको समता विलास समझ ही नहीं आई अभी, केवल पढ़ा है उसने, समझ में नहीं आई उसकी। ना ईश्वर के बारे में कोई समझ में आई, ना अपने बारे में कोई समझ में आई। ईश्वर क्या है ये भी नहीं पता, मैं क्या हूं ये भी नहीं पता, पता इतना ही है कि मैं शरीर हूं बस। मैं शरीर हूं तो शरीर तो कर्म कर ही रहा है, इसलिए कहे तो मैं कर रहा हूं, क्यों हूं ही मैं जब शरीर, शरीर कर्म कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। महाराज जी कहते थे मैं कर रहा हूं कभी, क्योंकि महाराज जी के अंदर एक पल भी ये वहम आता ही नहीं था कि मैं शरीर हूं। इसलिए महाराज जी हमेशा ये कहते थे ईश्वर आज्ञा पूर्ण हुई, सारा ग्रंथ पूर्ण हुआ ईश्वर आज्ञा पूर्ण हुई, उनको वहम थोड़ना है ना, वो ये बात झूठ कह रहे हैं कि वैसे ही कह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मैंने कुछ नहीं किया है, उस प्रभु ने वाणी लिखानी थी लिखवा दी, इस मुंह का उसने इस्तेमाल कर लिया, इस देह का इस्तेमाल कर लिया, जैसा अच्छा काम कर दूंगा मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, देखो मैंने कितना बड़ा तीर मार दिया, कितना दान कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया, मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। ये अहंकार ही सिद्ध कर रहा है कि तुम हर समय यही सोच रहे हो कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, यह भाव आपके अंदर आता ही नहीं कभी, तो विवेक कर्म करते हुए आपका कहाँ बना रहता है, गायब हो जाता है, नहीं हो जाता। तो इसीलिए सिमरन में भी वही बात आएगी, फिर जो देह के बंधन है सिमरन में सारे याद आएंगे। तो इसीलिए ये विवेक आपका परिपक्व होना चाहिए, ईश्वर क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मेरे इस मानव जन्म में, उसका महत्व आपकी बुद्धि में बना रहना चाहिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी महाराज जी की कि सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि आपका ईश्वर भक्ति नंबर एक कर्म है, उसके बाद सारे कर्म है, वो सफर नहीं करेगा आपका, बाकी काम सफर करेंगे आपका यदि करना ही है तो। इसीलिए जैसे जैसे आपके अंदर ईश्वर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी अपने बारे में भी, वैसे वैसे आपका मन जो है वो सिमरन में एकाग्र होगा। लेकिन एक बात फिर मैं कह रहा हूं कि मंत्र को मंत्र करके स्मरण ना करें, मंत्र को ईश्वर करके स्मरण करें, ये साक्षात ईश्वर है, उसी प्रकार ईश्वर है जैसे कि कोई गुरु सामने खड़ा होता है, कोई अवतार सामने खड़ा होता है तो हम उसको ईश्वर समझते हैं। तो वो भी ईश्वर नहीं, ईश्वर का आकार तो कोई है नहीं, फिर भी हम उसको ईश्वर समझते नहीं समझते। तो उसी प्रकार मंत्र ईश्वर ही है, उसी ने हमको पार लगाना है, उस प्रेम से उसका सिमरन करना चाहिए। तो विवेक, वैराग्य और ये प्रेम, ये तीन चीजें आपको अंदर एकाग्रता बनाती हैं और सिमरन में सफलता मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम।